நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் தத்ோ ஜயமுதீரயேத். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய ஹரயே பரமாத்மனே ப்ரணத க்லேஷநாசாய கோவிந்தாய நமோ நம. யுதிஷ்டிர் ஜி நே பிரஷ்ன கியா கி மஹாராஜ், இஸ் சம்சார் கே அந்தர் லோக் சோக் சே துக் சே ஔர் மிருத்யு சே ஹர்தம் டர்த்தே ரஹதே ஹேன். மிருத்யு அவஷ்ய ஆயேகி ஜானதே ஹேன் லேகின் டர்த்தே ஹேன். பிராரப்த கா துக் ஜரூர் போக்னா படேகா ஜானதே ஹேன் பரந்து டர்த்தே ஹேன். பரிவார் மே கோய் மர் ஜாதா ஹே தோ ஷோக் ஹோதா ஹே, ஜானதே ஹே கி சப் மர்னே வாலே ஹே, ஃபிர் பீ ஷோக் நீ ஹட்டதா ஹே. ஐஸா ஜான்னே கா மத்லப் க்யா நிக்லா? ஐஸே ஜான்னே கா க்யா அர்த் ஹுவா கி மிருத்யு ஆயேகி ஜரூர் ஆயேகி, மரோகே ஜரூர் மரேங்கே, லேகின் டர் லக்தா ஹே. ஃபிர் டர்னா க்யா பாத் ஹே? கோய் கர்ம கியா ஹே, துக் ஆயேகா தோ ஆயேகா ஹீ, உஸ்மே டர்னே கி க்யா பாத் ஹே? ஜானதே பீ ஹே ஔர் டர்தே பீ ஹே, தோ க்யா கரே மஹாராஜ், யே டர்னே லகே ஹம்கோ. பிதா மே பீஷ்ம நே கஹா கி பில்குல் டீக் பாத் ஹே யுதிஷ்டிர், இன் பிரஷ்னோ கா சமாதான் சந்தோ கே பினா நஹீ ஹோதா. கோய் கே தே கி ஜான மே கமி ஹே, தோ ஜான மே தோ கமி நீ மாலூம் ஹே, ஹம்கோ தோ மர்னா படேகா, க்யோங்கி கிசி நே கிசி கி மிருத்யு நஹீ தேகி, ஐசி பாத் தோ ஹே நஹீ. அப்னே ஹீ ஜீவன் மே அப்னே ஹீ ஷரீர் கி பால்ய மிருத்யு ஹோ கயி, பால்ய அவஸ்தா கி மிருத்யு ஹோ கயி. தூசரே கி தோ பாத் அலக் ஹே, அப்னே ஹீ அந்தர் தேக் லோ, ஃபிர் க்யா பாத் ஹே? பட கடின பிரஷ்ன ஹே தும்ஹாரா, கெஹரா பிரஷ்ன ஹே. தேகோ இஸ்கே அந்தர் ஏக் நாரத் ஜி கா ஔர் சமங்க நாம் கா ஏக் ஔர் ரிஷி, இன் தோனோ கா சம்வாத் மே தும்கோ சுனாதா ஹூ. சமங்க ஏக் வார் கி பாத் ஹே, நாரத் ஜி கஹீ சே ஆ ரஹே தே, சமங்க ரிஷி சமங்க தே வோ சாமனே ஆயே ஹூ. சாமனே ஆதே ஹி பிரணாம் நாரத் ஜி, ஐசே நஹீ போலே, பிரணாம் நாரத் ஜி ஐசே நஹீ போலே, யே சாதி கோ ஜமீன் பர் ரக் கர்கே பிரணாம் கியா உன்கோ, ஔர் வோ ரிஷி படே பிரசன்ன தே, ஔர் வோ ஆ ரஹே தே படே ஜோர் ஜோர் சே ஹாம்ப்தே ஹுவே ஜங்கல் மே, ஔர் பூக்கே தே, போஜன் மிலா நீ உஸ் தின், பூக்கே தே. நாரத் ஜி நே கஹா கி உர்சேவ பிரணமசே, வா வா ஹே ரிஷிவர், ஆப் ஹம்கோ யூ சாதி ஜமீன் பர் ரக் கர்கே பிரணாம் கர்தே ஹோ. பிராய லோக் தோ பாஹுப்யாம் தர்சி வச்சே, லோக் தோ பிராய யூ ஹாத் ஜோட் கர்கே கர் லேதே ஹேன். ஆப் தோ அப்னே இன் தோனோ புஜாவோ கே அந்தர் சாகர் கோ அப்னே அந்தர் சமேட் கர்கே பார் ஹோ ரஹே ஹோ, க்யோங்கி ஆப்கே சேஹரே பர் கித்னி பிரசன்னதா ஹே. ஆப் பூக்கே ஹோ, ஹோ கி நஹீ? போஜன ஆப்கோ மிலா நஹீ, ஜங்கல் கா கஷ்ட ஆப்கோ மில் ரஹா ஹே, ஃபிர் பீ ஆப் பிரஹிஷ்ட மனா பஹுத் ஆனந்தித் ஹோ, கோய் ஆப்கே ஷோக் நஹீ ஹே, க்யா காரண ஹே மஹாராஜ்? மேனே ஆப்கே விஷய மே கை பாத்தே சுனி ஹே, ஆப்கோ கோய் உத்வேக் நஹீ ஹோதா, கோய் கபராட் நஹீ ஹோதி, கோய் உத்தேஜனா நஹீ ஆதி, நித்ய திருப்த கி தரஹ ரஹதே ஹோ, பாலக் கி தரஹ போலா பாலா ஸ்வபாவ் ஹே, க்யா காரண ஹே? समंग ऋषि ने कहा कि हे नारद जी, आप ये बातें मुझसे क्यों पूछते हो, आप जानते नहीं हो क्या? लेकिन आप दूसरों को मान देने वाले हो, मानदय, सबको मान देने वाले हो, तो मैं तो एक बात जानता हूं कि जो होने वाला है वो होकर के रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम क्यों डरे, किससे डरे, क्या डरे बताओ? होने वाला तो होगा ही होगा, और नहीं होने वाला नहीं होगा। ये बात मैं तत्व से जानता हूं, इसलिए कोई विषाद नहीं है। जो मैंने कर्म किया उसका फल जरूर सामने आएगा, ये भी मैं जानता हूं, इसलिए इस जानकारी में डूबा रहता हूं। जगत में तो सब प्रकार के आदमी हैं, कोई गंभीर है तो कोई चंचल है, कोई अप्रतिष्ठित है, कोई प्रगतिशील है, कोई अंधे हैं, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, हर तरह के आदमी मिलते हैं। सब जी रहे, हम भी जी रहे, सबके भाग्य से कई चीजें उनको मिलती हैं, कई नहीं मिलती। वीते नहीं वो जीवंती, जो अपने कर्म किया उसके अनुसार जीते। बहुत से ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास रोटी का प्रबंध नहीं, कपड़े का प्रबंध नहीं, कोई उनके पास कोई वस्तु है ही नहीं, और बड़े विचार में बड़े आनंद में रहते हैं, वो भी जीते हैं। और कई कई ऐसे हैं शाके नचान्य जी, जिनको शाक भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी जीते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास सहस्रणों की जीवन थी, हजारों रुपया है, वे भी जीते हैं। और सती ने सैकड़ों रुपए, वो भी जीते हैं। अब यहां किसके लिए शोक करें महाराज? शोक तो एक अज्ञान का चिन्ह होता है। शोक तो तब करना चाहिए कि जब इन वस्तुओं का हमारे पर कोई प्रभाव पड़े, कि वस्तु नहीं है तो दुखी हो जाए, उस दुख के लिए दुख करना चाहिए। और वो वस्तु हमको मिल जाए तो हमको यदि खुशी हो जाए तो उस खुशी के लिए दुख करना चाहिए। अरे काय बात की खुशी है? कृतांत वश्यानि यदा सुखानि दुखानि वायन्न विधर्षयन्ति। ये सुख और दुख सब यमराज जी के हाथ में, मृत्यु के हाथ में है। ये सुख आएगा वो भी चला जाएगा, दुख आएगा वो भी चला जाएगा, रहने वाला तो है नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता उसकी प्रज्ञा है, माने बुद्धि है, वो समझ है। इस समझ के अंदर आदमी रहे तो फिर उसके बाद उसको कोई दुख नहीं होता। मनुष्य जो है घमंड करता है, मूढ़स्य दर्प सपुनर मोह एव, वही मोह के रूप में बदलता है। मूढ़ का आदमी होता है, मोहग्रस्त होता है। उस मोहग्रस्त के लिए न इस संसार में कहीं जगह, न परलोक में जगह है। सदा दुखों से घिरा रहता है। और जो इस मूर्खता को हटा देता है उसके पास आनंद की कोई कमी नहीं रहती। मैंने तो देख लिया है कि ये संसार सम परिवर्तमानम, ये तो उल्टा पुल्टा होने वाला है। इसलिए कभी हम तो संताप को प्राप्त होते ही नहीं। न मैं सुखों का चिंतन करता हूं, न मैं दुखों का चिंतन करता हूं। जो अच्छे महापुरुष होते हैं वो किसी से कुछ नहीं चाहते, प्रकृति से भी नहीं चाहते, किसी से भी कुछ नहीं चाहते। न अनागतम चाभिनंदेत च लाभम, वो भविष्य में होने वाला कोई लाभ है उस लाभ का भी चिंतन नहीं करते कि आगे हमको ऐसे मिलेगा ना, क्या पता क्या होगा। विपुले अर्थ लाभे सति न ऋषि, खूब धन संपत्ति अपार वैभव मिल जाए तो भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तथार्थ नाशे च नवई विषेदेत, और सब कुछ चला जाए तो अंदर में विषाद नहीं होता। ये भाई बंधु धन संपत्ति कुल पढ़ाई लिखाई मंत्र शक्ति ये सब मिलकर के भी किसी आदमी को दुख से नहीं हटा सकते। दुखात्रातुम सर्व एव उत्सहन्ते परत्र शीलेन तु यान्ति शान्तिम्। लेकिन अपना स्वभाव यदि अच्छा बना लेंगे तो उसके कारण से शांति मिलेगी। अपन देखते हैं धन से हमको शांति मिलेगी, भाई बंधुओं से पुत्र आदि से मिलेगी, कौल्यम हमारा उत्तम कुल है, कुल से हमको शांति किसी से नहीं मिलेगी। और जब तक चित्त में शांति नहीं है तब तक संसार में आना हमारा व्यर्थ है। देखो संसार में जितनी प्रिय चीज मिलती है उससे प्रसन्नता होती है, हर्ष पैदा होता है, और हर्ष होता है वो अभिमान पैदा करने वाला होता है, और अभिमान से आदमी नरक में जाता है। इसलिए मैं संसार में दुखों का त्याग नहीं करता हूँ, सुखों का त्याग करता हूँ। मुझे दुखों से इतना डर नहीं है नारद जी, मुझे सुखों से बड़ा डर लगता है, क्योंकि सारे दुखों की जड़ ये सुखी है। मेरे अंदर से मैंने तृष्णा और मोह का त्याग कर रखा है, इसलिए संसार के अंदर स्वच्छंद होकर विचरता हूँ। नारद जी न तो कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है, न कोई मेरा स्थान चुना हुआ है कि ये यहाँ रहना है। विचरता रहता हूँ, मिल जाता है वैसा खा लेता हूँ, चलता रहता है। न मैं मृत्यु से डरता हूँ, क्यों डरूं? नहीं है। मन में अनेक प्रकार के संदेह भरे पड़े हैं और परमार्थ का उन्होंने निश्चय नहीं किया है। परमात्मा क्या होते हैं क्या नहीं होते, बस सुबह उठते हैं काम धंधे में लग गए, खाने पीने में आए, सारे दिन थके मंदे रहे, पड़े रहे मौत के समान नींद में पड़े रहे, फिर उठे, फिर काम में लगे, फिर पड़े रहे, फिर करे रहे। ऐसे लोग भी कोई कल्याण के मार्ग में जा सकते हैं क्या? पिता में भीष्म ने कहा कि देखो अपने आप ऐसी जिंदगी व्यतीत करेंगे तब तो इनका कल्याण नहीं होगा, ये तो तुम्हारे प्रश्न से ही साबित हो रहा है। यदि इनको कल्याण की बात सोचते हो तो बड़े बूढ़े आदमी है घर में, एक तो उनको सेवा में लगाओ, और एक श्रवणम चैव शास्त्राणाम सत्संग सुनाओ। बिना सत्संग के उसको होश आएगा नहीं। गहरी नींद में पड़ा हुआ हो उसको कोई आदमी जगाता है, कुछ बोलता है, आवाज करता है, तब वो जागता है। ऐसे ही अज्ञान रूपी निद्रा में पड़े हुए को सत्संग के वाक्यों से जगाना चाहिए। गुरु पूजा सततम, और अपने परिवार में अपने से बड़े लोग हैं, माता पिता आदि गुरुजन, इनकी हरदम सेवा में लगाओ। सेवा करने से मन में स्वार्थ की भावना खत्म होती है, उसको होश आता है। देखो एक इतिहास बताते हैं, गालव ऋषि थे, गालव ऋषि और नारद जी इन दोनों का संवाद मिलता है। गालव ऋषि वही हैं जो गलता के कारण, गलता जयपुर के पास गलता तीर्थ है, वो गालव ऋषि के कारण से है। उनके आश्रम में नारद जी महाराज आए, बड़े विलक्षण थे गालव ऋषि। नारद जी आए तो कहा कि महाराज, नारद जी आज तो बड़ी कृपा की, कभी कभी आपके बारे में सोचता हूं, जितने संसार में सद्गुण होते हैं वो सारे आपके अंदर मौजूद हैं। आपके अंदर एक भी सद्गुण का अभाव नहीं है। महात्मा पुरुष ही हम लोगों के अज्ञान को दूर कर सकते हैं। शास्त्रों की बातें यदि हम पढ़ने लगें तो शास्त्र में तो अनेक बातें आती हैं, मैं तो हूं एक, शास्त्रों के उपदेश हैं अनेक, अब उनमें यत कार्यम न व्यवस्याम है, कौन सा काम करें इसकी कोई निश्चित धारणा नहीं बनती है। प्रत्येक आश्रम में इदम श्रेय है, इदम श्रेय है, ये कल्याण है, ये कल्याण है। तो महाराज हम इतने इतने छोटे से जीवन में और ढेर सारे कल्याण के साधनों को कैसे करें महाराज। अब जिनके मन में जो बात बैठ गई उन्होंने शास्त्रों में वैसा ही लिख दिया। अब हमको तो महाराज इतने शास्त्रों का कोई बात नहीं। शास्त्रम यदि भवेद एकम, एक शास्त्र होता और एक ही उपाय होता कि बस इस उपाय से चलो, तब तो देखो कोई बात भी होती। इधर तो शास्त्र बहुत है और श्रेयो गुह्यम प्रवेशितम, और कल्याण को बहुत खड्डे में डाल दिया, गुप्त खड्डे में रख दिया। जैसे कोई धन होता है उसको गुप्त रख देवे, फिर ऊपर सब ढक दे तो पता नहीं चले, तो पता ही नहीं चलता। इसलिए महाराज आप हमको बताओ, निश्चित उपाय बताओ कि हमको वास्तव में कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा देखो शास्त्र अनेक हैं, तो शास्त्रों के अनुसार चलने वाले मनुष्य भी अनेक हैं। आप एक के लिए शास्त्र थोड़ी बनाया है। सब आदमियों की रुचियां अलग अलग हैं, सब आदमियों की बुद्धियां अलग हैं, सब आदमियों के करने की शक्तियां अलग अलग हैं। इसलिए जो जिस रुचि का होता है उसको उसी रुचि का ही साधन बताया जाएगा। जैसे वैद्य के पास अनेक प्रकार के बीमार आते हैं, कोई तो कहता है कि मेरे कफ बहुत निकलता है, कोई कहता है मेरा कफ अटक ही जाता है, छाती में जमा पड़ा रहता है, क्या करें। यदि शरीर से ज्यादा कफ निकल गया तो मुश्किल, और कफ यदि शरीर में रह गया तो मुश्किल। तो वह दोनों प्रकार के बीमार हैं, किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, किसी को भूख लगती ही नहीं, किसी के अतिसार होता है, किसी के कब्जी होती है। तो वैद्य सबको अपने हिसाब से दवाई देता है, उसके पास सब प्रकार की दवाई है। ऐसे ही शास्त्र है, ये दवाखाने के समान है, जैसा बीमार वैसा ही उसका इलाज होता है। निवृत्ति कर्मण है पापात, शास्त्र का उद्देश्य इतना ही है कि पाप से आदमी को बचना चाहिए और पुण्य के अंदर सदा लगे रहना चाहिए, और सद्भिश्चय समुदाचार्य और महात्माओं के पास रहकर उनसे आचरण की विद्या सीखनी चाहिए। ये शास्त्र का तात्पर्य है। मुख्य मुख्य बात है कि मनुष्य को सत्यवादी होना चाहिए, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरा अहंकार से त्याग है। किसी बात का लेकर अहंकार होता है तो वो संसार में फंस गया, अहंकार का त्याग करना चाहिए। और संतोष है, जैसा मिले उसमें संतोष करना चाहिए, जहां तक हो एकांत रहना चाहिए, क्योंकि अपने स्वभाव से दूसरे को तकलीफ न हो और दूसरे के स्वभाव से अपने ऊपर असर न पड़े, इसलिए एकांत रहना चाहिए। कोई कहेगा हम घर में रहते हैं तो कैसे एकांत रहें साहब, बोलो ही मत, कम बोलो, कम बोलना चाहिए, कम बोले वो एकांत के बराबर ही है। शब्द रूप रस स्पर्शान सह गंधेन केवलान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है इन विषयों का तो थोड़ा ज्ञान करके इनका त्याग करना चाहिए। इनका ज्यादा सेवन करना कल्याण में सबसे बड़ी बड़ी बाधा है। और आचरण में लाने के लिए बताएं कि नक्तन चर्याम दिवा स्वप्नम, एक तो पहले रात में खूब लंबे समय तक जगते हैं, हमने सुना 12 एक दो बजे तक आदमी सोते हैं, दो बजे तक। आजकल शास्त्र कहता है कि अरे इतना लंबा मत, कल्याण चाहते हो तो नक्तम चर्याम, रात्रि में घूमो मत, रात्रि में इतने जगो मत, और फिर दिवा स्वप्नम, दिन में सो मत, आलस्य करो मत, और पैशुनम चुगली मत करो। किसी की चुगली करना, ये ऐसा है ये वैसा है, चुगली करो मत। एक मादक वस्तु का सेवन मत करो जिससे नशा आता है। अतियोगम अयोगंच, और या तो एकदम ही भूखे रहेंगे या खूब सा खा लेंगे, ये दो, ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए। परिमित भोजन करना चाहिए। एक लोगों के बीच में बैठे हो तो अपनी बड़ाई करके बात करना, इसमें संकोच करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो आदमी अपने गुणों का वर्णन करता है उसका अर्थ यही है कि उसके अंदर दोष है, उन दोषों को वो छिपाता है। स्वगुणै रेव मार्गेत विप्रकर्षम पृथक जनात, जो उसमें वो अपनी विशेषता देखता है ना, वो अपने अंदर ही उसको पचाना चाहिए, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। और परेशान निंदया, दूसरे आदमियों की निंदा करोगे तो निंदा करने से उस निंदित कर्म में हमारी इंद्रियां मन चला गया, तो वो निंदा का कर्म हमारे अंदर घुस गया, अब वही पाप हमसे होने लगेगा। इसलिए मनुष्य को जहां तक हो पर निंदा रूपी पाप से बचना ही चाहिए, और अपने आप की प्रशंसा रूपी पाप से भी बचना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि ऋषिवर अब्रुवन कस्यचित् निंदाम, किसी की निंदा न करे, और आत्म पूजाम अवर्णयन, और अपनी प्रशंसा न करे, इतने में वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। इतने से मात्र से, जैसे सुगंध है, फूल की सुगंध है, वो फूल यहां रहा है लेकिन उसकी गंध अपने आप फैलती है, अपने आप हमारे नाक में आती है, वो फूल हमारे नाक में थोड़ा ही घुसता है, उसकी गंध अपने आप नाक में आती है। ऐसे यदि आपके अंदर सद्गुण है तो वो अपने आप ही लोगों में प्रकाशित हो जाएंगे। आप प्रकाशित करके अपने सद्गुणों का नाश मत कीजिए। बार बार कहते हैं कि जो आदमी अपनी प्रशंसा करता है आत्म प्रशंसया मूर्ख है, वो आदमी महामूर्ख है। एतस्मात कारणात, इन सब कारणों से मैंने तो यही विचार किया कि मनुष्य को प्रज्ञा लाभ करना चाहिए, बड़ी अच्छी समझ का लाभ करना चाहिए। एक बात और बताएं कि ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात, कोई आदमी जब तक हमसे पूछे नहीं तब तक उसको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी बात समझ करके उसको बताओगे और वो आदमी उसका बिना पूछे आप उसको बताओगे तो वो उसकी कीमत नहीं करेगा, तो उसका दोष उसको लगेगा, और आपके अंदर भी उस बात की जो अच्छाई है उस अच्छाई का महत्व कम हो जाएगा। बिना पूछे का तो उसने आचरण में नहीं ली, तो आपके मन में भी आएगी बात क्या है भाई, इसका मतलब इस बात में कुछ कमी है। इतने दिन तक तो आपके अंदर श्रद्धा थी उस बात की, इसलिए बिना पूछे बात नहीं कहनी चाहिए। जानन्नपि मेधावी जड़वत समुपाविशेत, जानता वा भी मूर्ख की तरह, नहीं पूछे तो नहीं बताए। और यदि कल ने ये कह दिया कि साहब मैंने आपसे पूछा थोड़ी था, आप मुझे क्यों ये फालतू की ज्ञान की बात बताते हो, तो अच्छा नहीं लगता, उसका तिरस्कार होगा। और मनुष्य को ये ढूंढते रहना चाहिए कि मेरी संगत कैसी है, कैसे आदमी मेरे संग में, अच्छे आदमी हैं कि बुरे आदमी हैं, स्वार्थी हैं कि लोलुप हैं, घमंडी हैं कि व्यसनी हैं, इन बातों को बराबर देखते रहना चाहिए। जिस देश के अंदर वर्ण और धर्म और आश्रम धर्म की मर्यादाएं नहीं है, उस देश में रहने से कोई लाभ नहीं है। जहां विघसासी पुरुष रहते हो वहां रहना चाहिए। विघसासी, विघसासी क्या होता है माने घर के अंदर भोजन किया, सबको भोजन कराने के बाद जो भोजन बचा उसको भोजन करने वाले विघसासी होते हैं। सबको भोजन करा दिया और एक रोटी बची, तो वो एक रोटी बची और इतना साग साग बचा उसको प्यूर ले लेगा, उसका शरीर ज्यादा अच्छा होगा। भरपेट भोजन करने के बजाय वो इतनी सी भी रोटी ले लेगा तो उसका उसका जो है बहुत अच्छा अमृत बनेगा, रस बनेगा। तो भिक्षासी होना चाहिए। जहां ब्राह्मणों का अनादर होता हो उस देश में नहीं रहना चाहिए। जहां माता पिता और गुरुजनों का आदर होता हो उस देश को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जहां लालची पुरुष धर्म की मर्यादा को छोड़ देते हैं उस देश में मत रहो। जहां मात्सर्य दोष भी नहीं है ऐसे जहां पवित्र मनुष्य रहते हैं उनके पास जानबूझ करके संपर्क करना चाहिए। जिस देश के अंदर ब्राह्मण को रोटी के लिए तरसना पड़ता हो उस देश में नहीं रहना चाहिए। जहां लोग प्रसन्नता पूर्वक प्रिय माणा नरा यत्र प्रच्छेयु रयाचिता, बिना मांगे ही लोग देने के लिए तैयार हो जाए ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए, स्वस्थ चित्त होकर के रहना चाहिए। अपने इंद्रियों का दमन करके रहना चाहिए। और अविनीत और दुष्ट पुरुष हैं उनसे बचना चाहिए। इस प्रकार का नियम रखने वाला व्यक्ति कभी किसी प्रकार से कष्ट नहीं पाता और उनका कल्याण हो जाता है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज कथम नु युक्त पृथ्वी चरित अस्मद विधो नृपय, हमारे जैसा राजा कैसा व्यवहार करे, कैसा वो साधन करे, किन गुणों से युक्त होकर के यहां रहे कि उसको आसक्ति न हो। हम छोटी उम्र में हैं, बड़ा भारी राज्य मिल रहा है, इस राज्य के लिए कितना हमने युद्ध किया है और फिर भी इस राज्य से हम निर्लेप होकर रहे, कैसे रह सकते हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा कि देखिए सगर नाम के एक राजा थे, उन्होंने उनके एक संत मिले अरिष्ट नेमी। सगर राजा ने यही बात कही जो तुम हमसे पूछते हो कि मनुष्य किस उपाय से रहे कि उस राज्य के बीच में रहता हुआ भी वो राज्य से लिप्त न हो, स्त्री पुत्र आदि के बीच में रहे लेकिन उनसे मोहग्रस्त न हो, यदि पुत्र वगैरह अपराध करने राजा के सामने तो राजा और प्रजाजनों को दंड देने में संकोच नहीं करता, पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ जाता है, उस समय में क्या करे, ऐसे कई प्रश्न किए। तो अरिष्ट नेमी ने उनका उत्तर दिया कि देखो जिन आदमियों ने मोक्ष को सबसे बड़ा सुख माना है वे लोग इतने मात्र से बड़े सावधान हो जाते हैं, और जिन लोगों ने संसार के सुख को बहुत बड़ा मान लिया है उनको आप कितना ही ज्ञान का उपदेश दो, कितना ही समझाओ, वो न सक्यम तत्चिकित्सितम, उनकी किसी प्रकार से चिकित्सा नहीं हो सकती। न स मोक्षाय कल्पते, स्नेह के जाल में मोह के जाल में ऐसे गुथे हुए रहते हैं कि वो और उलझते ही चले जाते हैं। अब तुम यही पूछोगे कि साहब ये स्नेह जाल कैसे दूर हो, तो देखो सबसे पहले बात तो ये है कि अपने संतान वगैरह हो जाए और वो संतान को योग्य बना दो। योग्य बनाने के बाद वो संतान स्वयं संतान युक्त हो जाए, उनके बाल बच्चे हो जाए, तब मनुष्य को उन सब से अपना अलग संपर्क रखना चाहिए। और उनको ये विश्वास हो जाए कि लड़का अपनी माँ की खूब सेवा करेगा तो लड़कों के पास में माँ को रख देवे और स्वयं एकदम निर्लेप हो जाए। उनको ये समझना चाहिए कि हमने इंद्रियों के द्वारा विषयों का खूब अनुभव कर लिया, कृत कौतूहल है, संसार का कौतूहल देख लिया, तमाशा देख लिया, तो मुक्तश्चर यथा सुखम। फिर इधर मुंह देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि इनका यथार्थ रूप देखा हुआ है। इनके अंदर अब कोई नया सुख मिलने वाला होगा, नई चीज आएगी, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए कोई कि अब किसी में राग और द्वेष न करके और बड़े आनंद के साथ अपने आप में, अपने आप के आनंद में रहना चाहिए। देखो इस संसार की कितनी बड़ी भारी कमजोरी है और अपनी भी कमजोरी है कि जब अपने आदमी है, स्वजन आदमी है, मेरे परिवार का ये आदमी है ऐसा मुंह रखते हैं और जब मृत्यु आती है हम उसको मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं। स्वजनम यदा मृत्यु और हंते व तव पश्यत है, तुम्हारे देखते देखते जब तुम्हारे ही आत्मी व्यक्ति को मृत्यु मारती है तब आपको यहां समझ लेना चाहिए कि मेरे में कितनी शक्ति है, हम उसको बचा नहीं सके, हमारे में कितनी शक्ति है। ऐसे अपने को संसार के अंदर उथल पुथल करने में अशक्त माने और अपने स्वरूप के अंदर अगाध शक्ति माने तब जो है मनुष्य इस प्रकार से फंसता नहीं है। तुमको ये भी विचार करना चाहिए यदा मृतंच स्वजनम, अपना आदमी मर गया, अब मरने के बाद वो सुखी अवस्था में है कि दुखी अवस्था में, कोई पता नहीं चलता ना, नहीं पता चलता, तब मनुष्य को अपने ऊपर ही विचार करना चाहिए कि भाई आज मुझे मरे हुए का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे ही हम भी मर जाएंगे, हमारा किसको क्या ज्ञान होगा, क्योंकि इनके साथ तो थोड़ी देर का समागम है, थोड़ी देर का साथ है, बाद में क्या होगा। जो आदमी दुर्व्यसनों से मुक्त है और जो आदमी स्त्री के नयनों से ऊपर उठ गया है वह व्यक्ति मुक्त है। जो आदमी जन्म मृत्यु के चक्र से प्रभावित है, जानता है कि ऐसा जन्म होता है मृत्यु होता है तो मरना पड़ेगा, कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो भोगना पड़ेगा, इसको ठीक ढंग से समझ करके अपना बचाव करता है वो मुक्त है। जो सब सुखों के अंदर मौत देखता है वो मुक्त है। जो सर्वदा कम वस्तुओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है ऐसा समझ करके पर्यंक शैया भूमिश्च समाने यस्य देहिन, चाहे उसको जमीन पर सुलाओ और चाहे उसको पलंग पर सुलाओ, दोनों उसके लिए समान है। सालयश्च कदन्नंच, चाहे तो खूब बढ़िया सुंदर चावल का भोजन कराओ और चाहे कदन्नंच माने चाहे कितना ही खराब उसको भोजन कराओ, वो उसमें किसी प्रकार से हसोक नहीं होता, वो मुक्त होता है। चाहे रेशमी वस्त्र पहना दो और चाहे मृगचर्म पहना दो, उसमें कोई सुखी दुखी नहीं होता। वो ये मानता है कि रक्त मूत्र पुरीषाणाम दोषाणाम संचयांश तथा शरीर के अंदर तो गंदी गंदी चीजें भरी पड़ी हैं। शरीरे दोष बहुलम, शरीर के अंदर अनेक प्रकार की कमियां हैं, इसलिए इस शरीर को कितना सजाओगे, कितना अच्छा बनाओगे, इससे वैराग्य कर लेता है, वो मुक्त होता है। और देखो राजन, भगवान ने वृद्ध अवस्था बनाई, उसके बाल सफेद हो गए, चमड़ियां लटकने लग गई, इंद्रियों से व्यवहार होना बंद हो गया, न आंख से दिखता है पूरा, न कान से सुनता है, कुब्ज भावन से जरया, और शरीर से वो कुबड़ा सा हो जाता है, यूं यूं नीचा करके चलता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति सावधान नहीं होता है, उसके समान संसार में दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये वचन सुनकर के राजा सगर बड़े प्रभावित हुए। युधिष्ठिर महाराज ने अब अगला एक प्रश्न किया कि महाराज मैं पूछना तो यही चाहता था कल्याण के विषय में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें और भी याद आ गईं। एक तो ये उष्णा नाम के जो भृगु जी के बेटा है उनको शुक्राचारी क्यों बोलते हैं, और ये असुरों का तो काम करते हैं, देवताओं का विरोध रखते हैं, इसमें क्या कारण है? जब भी देखो ये शुक्राचार्य जी देवताओं का विरोधी काम करेंगे, असुरों का पक्ष लेंगे। इतने अच्छे ऋषि हैं, भृगु महाराज के वंश में पैदा हुए हैं, वंश में क्या भृगु जी के ही बेटा है। ऋषि मुनि तो सब देवताओं का पक्ष लेते हैं, शुक्राचार्य जी के जाने क्या जची। असुराणाम प्रिय कर है और सुराणाम अप्रिय रहता है, ये उल्टा पुल्टा क्यों हुआ महाराज? और इनका नाम तो था उष्णा, पर उष्णा से उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा, और इनके पास इतनी रिद्धि सिद्धि आई, इनमें मूल कारण क्या है महाराज कुछ पता नहीं चलता है। ये बड़े तेजस्वी हैं और ऋषि मुनि तो यहां दिखते हैं आकाश के अंदर, पर ये आकाश के अंदर शुक्राचार्य जी नहीं दिखते हैं, क्या बात है? सप्तऋषि दिखते हैं, सात ऋषि सप्तऋषि और भी दिखते हैं, सब है, लेकिन शुक्राचार्य जी आकाश में विचरण नहीं करते, इसका क्या कारण है? पितामह भीष्म ने कहा कि देखो पुत्र, किसी कारण से देवताओं से नाराज हो गए। कि महाराज वही तो कारण पूछना चाहता हूं कि एक बार की बात है कि देवताओं ने असुरों को खूब मारा, तब असुर लोग दौड़े दौड़े गए और भृगु महाराज के आश्रम में जाकर भृगु जी की जो पत्नी थी उसको कहा माँ हमारी रक्षा करो, माँ हमारी रक्षा करो, तो माँ शब्द से संबोधित कर दिया। तब कहा अच्छा बेटा तुम यहीं रहो। तब देवता लोग हैं वो घबराए कि भाई भृगु महाराज की पत्नी ने इनकी रक्षा कर ली, अब किसी स्त्री से थोड़ी लड़ा जाएगा, और फिर वो ऋषि पत्नी है, हम तो जाकर लड़ते अच्छा नहीं लगेंगे। तब वो देवता लोग वहां से घबराए, घबरा करके भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा महाराज भृगु महाराज इतने ऊंचे ऋषि हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने असुरों की रक्षा कर ली, अपने आश्रम में रख लिया, और वो असुर जो है आगे फिर आसुर भाव फैलाएंगे, तो आप कोई उपाय करो और उन असुरों को मारो। तब भगवान ने देखा कि भाई ऐसे देवी संपत्ति की तो रक्षा करनी चाहिए, देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान वहां से अपने अंग सुदर्शन चक्र लिए, सुदर्शन चक्र लेकर के और भृगु जी की जो पत्नी थी उसका सिर काट दिया। उस सिर काट दिया तो फिर वो उष्णा थे वो नाराज हो गए, और बचे हुए जो असुर थे उन असुरों को शुक्राचार्य जी ने अपने पास पढ़ाया लिखाया, उनको शास्त्र की विधि, और वे उष्णा की शरण में आ गए और फिर उनका पक्ष लेना चालू कर दिया। देवताओं से इसलिए नाराज रहे कि इन देवताओं ने विष्णु से कहकर के मेरी मां की हत्या करवा दी, तब से ये नाराज रहे। अब ये देखो बड़े भारी स्वामी हो गए देवता लोग। अब एक बार क्या हुआ कि देवता लोगों का जो कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर है कुबेर, उस कुबेर के पास खूब धन था, खूब धन, सारा धन तो उसी के पास। उसने अपनी योग विद्या के द्वारा कुबेर को जाकर कैद कर दिया और उसका सारा धन लेकर के और असुरों को दे दिया कि तुमको राज्य नहीं मिला तो क्या हुआ, स्वर्ग का राज्य नहीं मिला तो क्या, रुपया तो तुमको मिल गया, ये लो रुपया। तब सब देवता लोग घबरा करके और कुबेर भी साथ में होकर भगवान शंकर के पास गए। कुबेर चिल्लाया कि महाराज मेरे पर तो विश्वास करके देवताओं ने सारा धन रखा है और बरसों से हम लोग ही देव धन की रक्षा करते हैं, अब ये उष्णा जी ने वो सारा धन हमसे छीन लिया और छीन करके जाकर के और असुरों को दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, नहीं शंकर जी ने कहा अच्छा ऐसा कर लिया, नाराज हो गए, हम त्रिशूल लेके खड़े हो गए, कहाँ है वो उष्णा। आओ उन्होंने क्वासऊ क्वासऊ कहाँ है बताओ, ऐसे नाराज हो गए वो, अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के उष्णा थे, अब तो मुश्किल हो गई। अब उष्णा ने देखा कि शंकर भगवान से मैं कहीं छिप तो सकता नहीं हूं और अब इन्होंने क्रोध कर लिया, तो वे क्या किए कि शंकर भगवान के आंख के सामने नहीं रहे वो। अब शंकर भगवान ये कहां है यूं देखे आंख फाड़ करके तो वो पीछे चला जाए, ऐसे यूं देखे यूं देखे यूं देखे यूं देखे। अब भगवान शंकर को क्या पता कि एकदम पीठ के पीछे ही है वो, पीठ के पीछे छिप गया वो, तो यूं लिए मैं उसको ढूंढता हूं कहां है। इतने में वो बहुत छोटा रूप बनाकर भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर आकर बैठ गए। उष्णा जी छोटा सा रूप बना करके भगवान शंकर ने देख लिया कि ये तो भाई अग्रप्राग बैठ गया, मेरे शस्त्र की शरण में आ गया, अब इसी से मैं मारना चाहूं मारूं कैसे इसको, इसके ऊपर इतना सा बैठ गया बन करके। तब उन्होंने क्या किया कि वो शस्त्र था, उस शस्त्र को हाथ में त्रिशूल था, जोर लगाया तो बीच में से यूं मोड़ दिया, वो टेढ़ा हो गया, वो जैसे वो यूं था बीच में से मोड़ा, ये यूं ऐसे टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा करके मुंह में खाने लगे शंकर भगवान, और उसको वो खाने लगे तो वो घबराए उष्णा जी, अब मुंह में रख लिया उनको, मुंह में गए तो उन्होंने देखा कि दांत के नीचे तो कि किचड़ देंगे हमको, तो जो ही मुंह में गए सारे शरीर में इधर उधर दौड़ने लग गए, पेट में ऊपर इधर उधर उधर। शंकर भगवान ने कहा ये बड़ी मुश्किल होगी, अब कैसे उसको पकड़ो, पेट में घूमे या सिर पर, पेट में इधर उधर। युधिष्ठिर जी ने कहा किमर्थम व्यचरत राजन, वो इधर दौड़ने क्यों लगे, कि दौड़ने इसलिए लगे कि भाई अब वो शंकर भगवान के दांतों के नीचे न आ जाए, कहीं उनके कब्जे में न आ जाए और किसी प्रकार से वो न आ जाए, इसलिए भगवान शंकर ने कहा चलो हमारे पेट में तो पड़ा ही है, फिर क्या है, खाते तब भी पेट में जाता, अब ये जीता फिरता है तो फिरता है। भगवान शंकर फिर गए तपस्या करने, तपस्या करने गए तो फिर तपस्या करते 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 वो भी अंदर वो तपस्या थी शंकर भगवान की, वो उष्णा जी में भी आ गई। तत्संयोगेन वृद्धिम, भगवान शंकर के संयोग से उनके अंदर भी खूब वृद्धि हो गई उष्णा जी में भी, और वो ऐसे वृद्धि को प्राप्त हुए, वृद्धि को प्राप्त हुए। बहुत कल्पों के बाद में भगवान शंकर ने देखा, देखा तो देखा कि हमारी तपस्या का फल उष्णा को भी मिला है, और फिर उष्णा जी ने देखा कि भगवान शंकर की तपस्या मेरे अंदर आई है, अब वो अंदर ही अंदर पेट के अंदर ही उनकी खूब भगवान शंकर की स्तुति गाने लगे कि महाराज अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो। भगवान शंकर ने कहा जाओ तुम कैसे निकलते हो, आ तो गए थे मैंने मुंह में लिया, निकलो तुम कैसे निकलते हो। तब जो है उष्णा ने कहा महाराज मेरे से तो निकला नहीं जाएगा, आप ही मुझे निकालिए। तब भगवान शंकर ने पेशाब के रास्ते से उसको निकाला, तब उनका नाम शुक्र हो गया। सवई निष्क्रम्य शुक्रत्वम अभिपेदिवान, तब उनका नाम शुक्राचार्य हो गया। और सबसे पहले बाहर आते ही माता पार्वती के चरणों में गिर गए कि माता मुझे आपकी कृपा चाहिए। तो माता ने कहा कोई बात नहीं, अब जो है तुम्हारी माँ ने जैसी कृपा की थी ऐसे तुम्हारे पर कृपा मैं करता हूं। तो माता की शरण में चले गए, तब भगवान शंकर खुश हो गए और कहा कि ठीक है जाओ, हमारी तपस्या जो तुम्हारे पास थी वो तुम्हारे अंदर ही रहेगी और उस तपस्या से तुम आगे बढ़ते रहोगे। तो ये मैंने तुमको शुक्राचार्य जी की कथा सुनाई। युधिष्ठिर महाराज ने फिर आगे ये बात पूछी कि महाराज हमारा तो ये उपदेशों से मन भरता ही नहीं है, ये जो सत्संग की बातें हैं ये बातें नहीं है महाराज, न तृप्यामि अमृतस्य, ये तो अमृत लगता है, अमृत इससे मन तृप्त नहीं होता, इसलिए आप मुझे और सुनाइए ऐसी बातें कि मनुष्य क्या करे, मनुष्य का खुद का परिचय क्या है क्या नहीं है। तब पितामह भीष्म इनको कहते हैं कि देखो जनक जी महाराज ने पराशर नाम के ऋषि के पास बैठकर ज्ञान लिया था, उसका नाम है पराशर गीता, वो प्रसंग अब आगे चलाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।